खुदावन यीशु मसीह जो था, जो है, जो आने वाला है, उसके अजीम नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आए हम खुदावन के जुड़ चुके और अपने मतालिया का आगाज करें। आज मैं चाहूंगा कि हम खुदावन यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी में उन तमाम वाकयात पर गौर करें जिसे यीशु के मोजजात कहते हैं, उन तमाम मोजजात को जो बाइबल मुकद्दस में लिखे गए, तहरीर किए गए हैं, ताकि हम सब ईमान की ताजगी और मजबूती हासिल कर सकें। क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इसलिए जब कभी भी हम खुदा के कलाम का मुतालिया करें, मैं चाहता हूं कि इन बातों को अपने जहन में रखें। सबसे पहले अपनी हालत का जायजा लें। हर तरह के फिक्र, हर तरह के बोझ को जो इंसान होते हुए हम अपने दिल, दिमाग, सोच, ख्याल में रखते हैं, जो हमारे ख्यालात को बांटता है और खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो नहीं कराता, उन तमाम ख्यालात को, उन तमाम फिक्रों को खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द करें। और वो फरमाता है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। अपने तमाम बोझ को उसे दें। मत्ती 11 बाप उसकी 29वीं आयत। दूसरी बात, खुदावन से कहें कि मुझे हिकमत और दनाई दे। जैसे यर्मिया नबी के सहीफा में खुदा ने यर्मिया से वादा किया, उसका 33 बाप उसकी 3 आयत में खुदावन खुदा यर्मिया को कहता है कि तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा और तुझ पर बड़ी बड़ी गहरी बातें जाहिर करूंगा जिन्हें तू नहीं जानता। जब भी हम खुदा की हुजूरी में आए, खुदा मुझे सिखा, मुझे मुझे हिकमत और दनाई दे, ताकि तेरी गहरी बातों को समझ सकूं, सुन सकूं और उनको समझकर खुदाओं खुदा तेरी तारीफ, तेरी प्रस्तुति उस तौर से कर सकूं जिस तौर से मुझे करना लाजम है। और तीसरी बात, यकूब यूं कहता है कि महज कलाम को सुनने वाले ना बनो, बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। सो तीसरी बात, खुदावंद मुझे तेरे कलाम पर अमल करने की कुव्वत और ताकत दे। पहली बात, अपना बोझ उसे दें। दूसरी बात, खुदावंद मुझे अपने कलाम की गहरी बातों को समझने की हिकमत और दनाई दे। और तीसरी बात, उस पर अमल करके इस दुनिया में खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। आए हम खुदावंद के जुर झुकें और दुआ करें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। सो आए हम खुदावन से कहें कि मेरी तवज्जो मुकम्मल तौर पर तेरे कलाम की तरफ हो, ताकि तेरे गहरे कलाम को सुनकर उसे समझकर 100 गुना फल लाने वाला बनूं और इस जमीन पर बेहतरीन जिंदगी गुजारने वाला बनूं और बनती रहूं इस जमीन पर। सो आए हम दुआ करें। खुदा बाप, तेरा शुक्र करता हूं तेरे कलाम के लिए जो बेतासीर नहीं लौटता, जो हम सब के कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आज जो खुदावंद हम तेरे कलाम में से तेरे बेटे हमारे मनज्जी यीशु मसीह के बारे में सीखने वाले हैं, उसके उन तमाम जमीनी मोजजात के तलक से उन तमाम मोजजात पर गौर करेंगे बारी बारी। सो खुदावंद हमें पूरे दिल, पूरी जान और वफादारी से तेरे कलाम को सुन पर उस पर अमल करने की कुव्वत और ताकत बख्श। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन। मसीही बहनों और भाइयों, इससे पहले कि हम यीशु मसीह के कलाम में से यीशु मसीह के उन तमाम वाकयात पर गौर करें जो यीशु मसीह ने इस जमीन पर किए, मैं चाहता हूं कि आपको तारफ करवाया जाए यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी के, जो उसने 37 मोजजे किए। बाइबल मुकद्दस में तारफ के तौर पर बाइबल मुकद्दस में बहुत से मोजजात नहीं लिखे गए। अगर वो तमाम मोजजात लिखे जाते तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि इस जमीन पर किताबों को रखने की गुंजाइश ना होती। लेकिन जितने मोजजात लिखे गए हैं वो सब इसलिए लिखे गए हैं ताकि आपके और मेरे और जो मुस्तकबिल में इन पैगामात को सुनेंगे, सुनकर ईमान की मजबूती और कुव्वत हासिल कर सकें। आज तारफ के तौर पर मैं चाहता हूं कि इन चारों अनाजील में जो यीशु मसीह के मौजजात लिखे गए हैं उनका तारफ कराना चाहता हूं। और इससे पहले कि हम मौजजात पर गौर करें, ये बहुत ही अहम है कि आप तक इस बात को पहुंचाऊं कि चारों अनाजील में जो मौजजात लिखे गए हैं, उन चारों अनाजील को चार मुख्तलिफ लोगों ने लिखा, उसके पीछे क्या सोच थी, क्या मकसद था, क्यों लिखा गया। सो बाइबल मुकद्दस में कुल 66 किताबें हैं। कुल कितनी है? 66 किताबें, जिसे इंग्लिश में 66 बुक्स कहते हैं। 66 किताबें हैं। पुराने अहदनामा में हमें 39 किताबें मिलती हैं, 39 किताबें, और नए अहदनामा में 27 किताबें। इन 27 किताबों की जो जिल्द, जिसे नया अहदनामा कहते हैं, हमें पहली चार अनाजील मिलती हैं। इन चार अनाजील में यीशु मसीह की जिंदगी के वो तमाम वाकयात दर्ज किए गए हैं, यानी कि यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर जमीनी जिंदगी जो उसने गुजारी, वो तमाम मौजजात, वो कहां कहां पर गया, कौन कौन उसने कौन कौन से उसने काम किए, किन लोगों से उसने गुफ्तगू की, कैसे कैसे मौजजात किए, और कैसे कैसे उसने लोगों को चुना, किस तरह बदरूहों को निकाला, किस तरह अंधों को शिफा दी, कौन सी तमासील उसने कही, कौन से मोजज़े उसने किए, किस तरह उसने दुख उठाया। और इन तमाम अनाजील में वो निजात के बारे में, दोजक के बारे में, हमेशा की जिंदगी के बारे में, और उस अबदी अजर के बारे में जो ईमानदारों को दरकार और ईमानदारों के लिए मौका है कि जमीन पर कमाएं यीशु के कलाम पर अमल करके, वो तमाम वाक्यात लिखे गए। और फिर यीशु मसीह के मार खाने के बाद, मुर्दों में से सलीब पर जान देने के बाद, मुर्दों कब्र में उतारा जाना, मुर्दों में से जी उठना, और जी उठने के बाद फिर तमाम शागिर्दों पर और मुख्तलिफ लोगों पर यीशु मसीह का जाहिर होना। और उसके बाद फिर यीशु मसीह जब जाहिर होता रहा, तो उसके बाद फिर वो आसमान पर उठा लिया जाता है, आसमान पर चढ़ जाता है और वादा करता है कि मैं वापस आऊंगा। सो इन चारों अनाजील में हमें यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने और वापस आने के बारे में क्या मिलता है? बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ तारफ के तौर पर देखेंगे कि ये चार अनाजील किन लोगों ने लिखी और उन चारों अनाजील में यीशु मसीह को क्या बयान किया गया है। तो तारफ के तौर पर यीशु मसीह के मौजजात, जब हम यीशु मसीह के मौजजात को सीखते हैं, तो मैं चाहता हूं इन चार अनाजील को, चारों अनाजील के नाम है मत्ती की अंजील, जो खासल खास यहूदियों के लिए लिखी गई, लूका की अंजील, मरकस की अंजील, और फिर यूहन्ना की अंजील। अंजीलों की तरतीब कुछ इस तरह है, मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील, लूका की अंजील और यूहन्ना की अंजील। जब हम बाइबल मुकद्दस की इन चार अनाजील पर गौर करते हैं, जिनमें यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी, पैदाइश और तमाम वाकयात को लिखा गया है, तो हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। खासकर मैं चाहता हूं कि आज आपको इन चारों अनाजील में लिखने वालों की सोच और उनकी जो पेशकश है, उनका जो जोर है, किस बात पर है। जब हम मत्ती की अंजील को देखते हैं, तो मत्ती खासल खास अपने दौर के उन तमाम यहूदियों को, मत्ती कौन था? यहूदी था। ये रोमियों के लिए काम करता था, जिसे कहते हैं महसूल लेने वाला, मत्ती महसूल लेने वाला, जिसे इंग्लिश में टैक्स कलेक्टर कहते हैं। मत्ती रूमियों के लिए काम करता था और यीशु मसीह ने मत्ती रसूल को रसूल होने के लिए चुना, और मत्ती ने यीशु मसीह की जिंदगी के वो तमाम वाकयात लिखे गए, और मत्ती यीशु मसीह को यहूदियों का बादशाह पेश करता है, यानी जिसके लिए वादा किया गया था कि वो दाऊद की नस्ल से पैदा होगा और बनी इसराइल कौम पर अच्छे चरवाहे की तरह क्या करेगा, गल्लाबानी करेगा। सो मत्ती की इंजील में यीशु मसीह को यहूदियों का बादशाह पेश किया गया है, जिसके लिए वादा किया गया था, जिसके लिए नबूवतें की गई थी, जिसके लिए बहुत सी नबूवतें जो पूरी हुई। इसलिए मत्ती का जो जोर है वो मत्ती की इंजील में क्या है? यीशु मसीह की बादशाहत और यीशु मसीह को बादशाह पेश करता है। इसीलिए जो सवाल हम देखते हैं, जो पहला सवाल मत्ती की इंजील में पूछा गया, वो कौन सा था? मत्ती की इंजील उसका दो बाप उसकी दो आयत में, जब कई मजूसी जो पूरब से तहकीक करते हुए सितारों का भेद जानते थे, जो सितारों की चाल और ढाल और उनको पढ़ते थे, वो इस बात को पढ़कर सुनकर उन तमाम बातों को समझते हुए क्या आते हैं? यरूशलेम में आते हैं, बैतलहम में आते हैं। और वहां पर वो जब आते हैं यरूशलेम में, तो वहां पर वाक्य क्या कहते हैं? पहला सवाल जो बादशाह से पूछते हैं, उसके लोगों से, जो उस वक्त के जो भेद रखने वाले, जो समझने वाले लोग हैं, उनसे पूछते हैं, जब हम मत्ती की इंजील उसके दो बाब को देखते हैं, कि जब वो यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है। सो मत्ती की इंजील में आपको खासल खास यहूदियों के बादशाह के बारे में, यीशु मसीह की पैदाइश, यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी, बहुत से मोजज़ात, उसका सलीब पर दुख उठाना, उसका रद्द किया जाना, कब्र में उतारा जाना और फिर मुर्दों में से जी उठना, क्या करते हैं? मत्ती रसूल इस बात पर जोर देता है कि वो यहूदियों का बादशाह है जो मसा किया हुआ यीशु, जो अलैदा किया हुआ क्या है? दाऊद की नस्ल से पैदा होने वाला, वादा किया हुआ खुदा का क्या है? भेजा हुआ नजात दहिंदा। सो मत्ती की इंजील यीशु को खुदा की तरफ से भेजा हुआ वो बादशाह पेश करती है, जो अपने लोगों की क्या करेगा? रहनुमाई करेगा और उन पर हुकूमत और गलाबानी करेगा। जब हम मरकस की इंजील को देखते हैं, तो मरकस की इंजील बहुत ही खूबसूरत तरीके से मरकस रोमियो को, जो रोमी उस दौर के थे, उनको खासल खास पर तौर पर यीशु मसीह को इस तरह पेश करता है कि वो क्या है? खुदा का खादम। वो ऐसा वफादार खादम, ऐसा ताबेदार खादम है जो क्या है? इस जमीन पर नमूना देने के लिए आया है। सो यीशु मसीह को मरकस अपनी इंजील में क्या पेश करता है? खादम, ऐसा खादम जो खिदमत करने आया है, खिदमत लेने नहीं आया है। और इसका हमें हवाला मिलता है मरकस 10 बाप उसकी 45वीं आयत में, जब यीशु मसीह ने कहा है, जो अव्वल हैं वो आखिर हो जाएंगे और जो आखिर हैं वो अव्वल हो जाएंगे, क्योंकि इब्ने आदम खिदमत कराने नहीं बल्कि खिदमत करने आया है, ताकि बथेरों के लिए अपनी जान फिदिये में दे। सो मरकस रूमियों को पेश करता है कि यीशु मसीह वो ऐसा खादम है, वो ऐसा नमूना है जिसकी हमें क्या करनी है? नकल करनी है, जिसके पीछे चलना है, जिसके हमने हम शक्ल बनना है। क्योंकि रूमी दौर के मुताबिक, रूमी के बहुत से, रूमियों के बहुत से गुलाम होते थे, बहुत से नौकर होते थे, बहुत से खादम होते थे, और खादमों को जो कहा जाता था वो करते थे। और पुराने खादम जो होते थे वो नए खादमों के लिए, नए गुलामों के लिए क्या बनते थे? मिसाल और नमूना बनते थे कि किस तरह वो खादम अपने मालक की खिदमत करें। सो यीशु मसीह खुदा की तरफ से खुदा का ऐसा खादम है जो जमीन पर आया ताकि हम सब के लिए क्या बने? नमूना बने, ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चल सकें। सो मरकज खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का खादम, इब्ने आदम जो खिदमत करने आया है, ना कि खिदमत लेने के लिए, ताकि सब उससे सीख सकें। और तीसरी बात, लूका की इंजील, लूका की इंजील में जब हम देखते हैं, तो लूका की इंजील में लूका यीशु मसीह की इंसानियत पर जोर देता है कि वो ऐसा इंसान है, वो ऐसा इब्ने आदम है, इब्ने आदम जो इस मकसद के लिए जमीन पर आया है कि बनी नू इंसान जो खोया हुआ है, गुनाह की भीड़ में ऐसे गुमराह है, गुनाहों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उन सब को छुड़ाने के लिए वो मत्ती लूका यीशु मसीह को क्या पेश करता है? इब्ने आदम, यानी के नजात दहिंदा, जो इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है। लूका की इंजील में आप خاصل خاص ان باتوں کو دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نجات، یسوع مسیح نجات کا پیغام اور یسوع مسیح نجات کو دینے کے لیے اور چھٹکارا بننے کے لیے آیا. سو مرکز یسوع مسیح کو خادم، لوکا یسوع مسیح کی انسانیت پر زور دیتا ہے کہ وہ ابن آدم ہے، اور اسے ابن آدم کی انجیل بھی کہتے ہیں یا ابن آدم کے طور پر اسے پیش کرتا ہے. اور لوکا 19 باب جب ہم 10 آیت میں دیکھتے ہیں، تو یہو کے شہر میں جب یسو داخل ہوتا ہے، وہاں پر زکی نام شخص کو جو گمراہ تھا، گمراہی میں تھا، نجات یافتہ نہیں تھا، اسے کیا کرتا ہے؟ یسوع مسیح نجات دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. سو یوحنا کی انجیل، لوکا کی انجیل خاصل خاص لکھی گئی ہے یونانیوں کے لیے. کن کے لکھیے؟ یونانیوں کے لیے. مرکز کی انجیل، معذرت چاہتا ہوں، متی کی انجیل یہودیوں کے لیے لکھی گئی کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ بادشاہ. مرکز کی انجیل رومیوں کے لیے لکھی گئی کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ خادم ہے. اور لوکا کی انجیل ان تمام یونانیوں کے لیے لکھی گئی کہ وہ کیا ہے؟ ابن آدم ہے، کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. اور یوحنا کی انجیل، یوحنا کی انجیل جو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے مثال ہیں، تمام قوموں کے لیے لکھی گئی ہے. اس میں یوحنا رسول، اس میں یوحنا خدا کا بندہ، خدا کا خادم، چنا ہوا خدا کا بندہ، یسوع مسیح کو خدا بیان کرتا ہے، ابن خدا بیان کرتا ہے، خدا یسوع مسیح کی الوہیت اور اس کی خدائی پر زور دیتا ہے کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ جسم میں خدا ہے، وہ مجسم ہوا خدا ہے جو اپنا تخت چھوڑ کر اس زمین پر تمام بھیڑوں کے لیے کیا بنا ہے؟ ایسا نمونہ بنا ہے کہ ان سب کی رہنمائی کر سکے. سو جب ہم یوحنا کی انجیل کو دیکھتے ہیں، تو یوحنا یسوع مسیح کی خدائی پر، اور یوحنا کی انجیل میں ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ بیان ملتے ہیں جو خدا کی ذات کی طرف اشارہ ہے. پرانے عہد نامہ میں خدا کا جو نام تھا، ان بہت سے ناموں میں سے ایک نام تھا، وہ کیا تھا؟ میں ہوں جو ہوں، یہ میرا نام ہے. سو نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح 7 یہ بیان کہتا ہے، میں ہوں دنیا کا نور، میں ہوں زندگی کی روٹی، میں ہوں اچھا چرواہا، میں ہوں دروازہ، میں ہوں قیامت اور زندگی، میں ہوں راہ اور حق اور زندگی. اور پھر اچھی، اور یسوع مسیح کہتا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. سو ان 7 میں ہمیں یسوع مسیح کی خدائی نظر آتی ہے. اور پھر یسوع مسیح 7 کرتا ہے، جس میں پانی کو وہ میں بناتا ہے، لازر کو وہ زندہ کرتا ہے، کوڑیوں کو شفا دیتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، پانی پر چلتا ہوا نظر آتا ہے، اور بہت سے عجیب عجیب کام ہمیں نظر آتے ہیں. سو یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح کو یوحنا پیش کرتا ہے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ جسم میں خدا ہے. وہ یسوع مسیح کی خدائی پر زور دیتا ہے. سو 4 متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل، ان 4 میں یسوع مسیح کو مختلف طور پر یہ 4 رائٹر، جسے کہتے ہیں لکھاری یا لکھنے والے، جنہوں نے خدا کے روح القدس کی رہنمائی میں ان واقعات کو لکھا جو بہت ہی اعلیٰ ہیں. سو ان 4 میں ہم یسوع مسیح کی زندگی کے ان تمام معجزات پر غور کریں گے. جب ہم ان کو گنتے ہیں تو 37 معجزات ہیں. سو متی کی انجیل میں یسوع مسیح کو وعدہ کیا ہوا نجات دہندہ کے طور پر یہودیوں کا بادشاہ پیش کیا گیا ہے، اور اسی بات پر متی زور دیتا ہے کہ یسوع مسیح یہودیوں کا بادشاہ ہے جس کے لیے وعدہ کیا گیا تھا. مرکز میں یسوع مسیح جو کہ بہت ہی طاقتور ہے، بہت ہی زوراور ہے، وہ مرکز یسوع مسیح کو خدا کا خادم، طاقتور خادم، حلیم یا خاکسار خادم، نجات دہندہ پیش کرتا ہے جو زندگی دیتا ہے، جو زندگی کے لیے بہترین مثال اور नमूना है। सुमत्ती की इंजील दो बाब उसकी दो आयत, यहूदियों का बादशाह। मरकज की इंजील खुदा का खादम इब्ने आदम, खिदमत करने वाला ना के खिदमत लेने वाला। मरकज 10 बात उसकी 45वीं आयत। और फिर लूका की इंजील कामल नजात दहिंदा, यानी के इब्ने आदम जो अपने फजल के बायस खोयों को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है। लूका 19वां बाप उसकी 10 आयत। और यहन्ना की इंजील में यसु की अलूहियत, यसु मसीह की अलाहियत और यसु मसीह की खुदाई के वो जिस्म में खुदा है, इस बात पर जोर दिया गया है। और इसका हमें जिक्र मिलता है यहन्ना की इंजील जब हम उसका 30वां बाप 20वां बाप उसकी 30वीं आयत को देखते हैं, तो लिखा है और यसु ने और बहुत से मोजज़े शिगिर्दों के साथ सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए। और 31वीं आयत इस बात को कहती है, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यसु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से क्या पाओ, जिंदगी पाओ। सो यसु मसीह जिस्म में खुदा, यानी कि वो खुदा है जिसे हम कहते हैं तसलीस, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्दस। सो ये है मुख्तसर सा तारफ इन चारों अनाजील का। आने वाले पैगामात में हम बारी बारी इन तमाम मौजजात पर गौर करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बात पर के इन तमाम वाक्यात को लिखने का मकसद क्या है, मेरे साथ देखें रोमियो, रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत उसका 15वां बाप, 15वां बाप उसकी जब हम 4 आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर यह बात लिखी गई है। जैसे यहन्ना कहता है कि जितने मोजज़ात लिखे गए हैं, जितने वाक्यात लिखे गए हैं, ये इसलिए हैं ताकि आप और मैं और जो कोई भी इनको पढ़ता है सुनकर ईमान की मजबूती हासिल कर सके। ये आयत आपके लिए पढ़ूंगा और फिर इस पर हम खत्म करेंगे। रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत उसका 15वां बाप उसकी 4 आयत में लिखा है, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं, वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं, ताकि सबर से और किताबे मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। इन मोजजात को जो हम पढ़ेंगे, जितने मोजजात लिखे गए हैं, ये सब हमारे सबर, हमारी तसल्ली, हमारी हौसला अफजाई के लिए लिखे गए हैं। और एक और हवाला जो भी अभी खुदा के पाकरू ने मेरे जहन में डाला है, दूसरा तमोथियस उसका 3वां बाप उसकी 15 आयत, 15, 16 और 17 आयत को पढ़ूंगा और इस पर गौर करें। यहां पर पालूस अपने रूहानी शिगिर्द को, अपने रूहानी बेटे को कहता है, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यसु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बश्क बख्श सकते हैं। वो तमाम नविश्ते, वो तमाम हवाला जात, वो तमाम कहानियां जो आपने सुनी हैं, जैसे पालूस तमोथियस को कहता है, वो सब इसीलिए तूने सुनी हैं, उन तमाम बातों को जो तूने बचपन में सीखी हैं, वो इसलिए है ताकि तू यसु पर ईमान लाए और ईमान लाकर दनाई हासिल करे, हिकमत हासिल करे। और 16वीं आयत में कहता है, हर एक सहीफा, यानी कि हर एक बात जो लिखी गई है, जो कही गई है, जो खुदा ने बोली है, हर एक सहीफा जो खुदा के अलहाम से है, तालीम ताकि हम तालीम हासिल कर सकें, अल्जाम ताकि उन बातों को जान सके जिनमें खुदा अल्जाम देता है, जो गलत है, जो खुदा को पसंद नहीं, उनमें खुदा को हम जान सके कि खुदा को कौन सी बातें पसंद है और कौन सी नहीं। और इसलाह, खुदा हमारी रहनुमाई करता है, हमारी हमारी नसीहत करता है, हमारी तरबियत करता है, और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद है, ताकि वो तमाम मौजज़ात, वो तमाम वाक्यात जो लिखे गए हैं हमारे लिए फायदामंद ठहरें, ताकि हम सब मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। इन पैगामात को तैयार करने का मकसद यही है कि आप मसीह में उसकी पहचान में तरक्की करें और इस जमीन पर रहते हुए उसके जलाल, उसकी गवाही के लिए इस्तेमाल हो, ताकि जब आप और मैं उसके सामने खड़े हों तो हमें शर्मिंदगी नहीं बल्कि फख्र हो। हम जब उसके सामने हो तो हम शर्मिंदा ना हो बल्कि कहें के खुदावंद यीशु मसीह हम हाजिर हैं और उससे ये बात सुनने वाले बने, शाबाश मेरे वफादार नौकर, शाबाश मेरे वफादार बेटे और बेटी, जो बादशाही बनाई आलम से पेशतर तैयार किए गए हैं उसमें आओ और खुशी मनाओ। सो खुदावंद आपको बरकत दे, फिर मिलेंगे, आए हम दुआ करें। खुदा बाप इस तारफ के लिए जो खुदावंद तेरे बेटे की जिंदगी और जमीनी कामात पर हम सीखने वाले हैं, खुदावंद सबको सुनकर खुदावंद खुदा उनको जोश और जज्बा और वलवला दे ताकि तेरे बेटे के और अपने मनजी को गहरे तौर पर जाने। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन। खुदावंद में फिर मिलेंगे।